हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्राधरः न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र का संकट, श्लोक संख्या 31 एंड 32। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं गजेंद्र सयदाप संकटम् प्राणस्य देहि विवशो यदिच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणिचिरम् दध्याविमां बुद्धिमथाव्यपद्यत। ఇష్టం గజేంద్ర సయదాపసంకటం ప్రాణస్య దేహి వివశోయదిచ్ఛయా అపారయన్నాత్మవిమోక్షణే చిరం దధ్యావిమం బుద్ధిమతయాభ్యపద్యత. అత్యంత హి సుందర్ విచారధార యహాం పర్ గజేంద్ర కి బతాయి జా రహీ హై. శబ్దార్థ దేఖియే, ఇత్తం గజేంద్ర, ఇత్తం మతలబ్ ఇస్ ప్రకార్ సే, గజేంద్ర మతలబ్ హాథియోం కి రాజా నే, స యదా జబ్, అపి ప్రాప్త, ఆప్ ప్రాప్తి కి సంకటం, कि इस प्रकार जब गजेंद्र को संकट प्राप्त हुआ, किस प्रकार हुआ, जैसे हमने कल देखा कि गजेंद्र और ग्राह के बीच में युद्ध हो रहा था, दोनों बहुत ही बलवान थे और युद्ध बहुत ही खतरनाक था, और हमने पढ़ा कि कंटिन्यूस युद्ध हो रहा था, विकर्षतो रंतरतो बहिर्मथा, कभी बाहर लेकर आ जाता गजेंद्र ग्राह को, तो कभी गजेंद्र को ग्राह खींच लेता, यूं बाहर और अंदर की ये चल रही थी प्रथा, और एक दूसरे से कोई नहीं जीत रहा था, दोनों कंटिन्यूस युद्ध कर रहे थे. कितने वर्ष तक? सुखदेव गोस्वामी ने कहा समा सहस्त्रम यगमन महीपते, समा सहस्त्रम, 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा. फिर क्या हुआ? फिर भी दोनों जीवित रहे. आश्चर्यमय युद्ध था, इतना आश्चर्यमय युद्ध था कि देवताओं ने भी ऐसा आश्चर्यमय युद्ध कभी नहीं देखा था, और देवता भी चित्रम एवं सतामरा, ये जो ये बहुत ज्यादा युद्ध आश्चर्यमय था, तो वो अमर देवता भी अपने अपने विमानों में खड़े होकर आकाश से यह युद्ध देख रहे थे. और समय जब बीत गया, 1000 वर्ष जब हो गए, तो क्या हुआ? ततो गजेंद्र से मनोबलो जसाम, फिर समय के बाद गजेंद्र का मन और बल और शारीरिक शक्ति जो है वो खत्म होने लगी. लेकिन यहाँ पर यह लिखा हुआ है गजेंद्र का मनोबल खत्म हुआ, लेकिन ग्राह का खत्म नहीं हुआ. ग्राह ने भी तो 1000 वर्ष तक युद्ध किया था, वो भी तो संकट में था ना, एक तरह से युद्ध तो कर रहा था. लेकिन यहाँ का कालेन दीर्घेन महानुभूव्यव्या, इस समय में गजेंद्र का तो गजेंद्र मनोबलो जसाम, इस समय के कारण गजेंद्र का मन शक्ति और बल शक्ति सब समाप्त तो हो गया. परंतु आगे कहते हैं विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकस, ये ग्राह के साथ जलौकस कहते हैं ग्राह, क्योंकि ग्राह जो है उसका घर ही था जल, तो अपने घर में रहने के कारण विपर उसके साथ तो पूरा अलग हो रहा था. सकलम जो सारा उसका, यानी उसका सब कुछ, उसका बल, उसकी आत्मशक्ति, उसकी मानस शक्ति, उसका शारीरिक बल सब बढ़ रहा था. गजेंद्र का कम हो रहा था और उसका ग्राह का, सॉरी गजेंद्र का कम हो रहा था और ग्राह क्योंकि जल में ही रहता है और जल में ही उसको ये सब का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उसका सब बढ़ रहा था, क्योंकि उसके लिए प्रतिकूल स्थिति थी. वास्तव में स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है. जिस जगह पर हम होते हैं उस जगह का प्रभाव होता है. इसे हमें अवश्य ही देखना चाहिए कि क्योंकि हम वास्तव में इस भौतिक जगत के माया के प्रभाव के जीव नहीं हैं, लेकिन जब हम भौतिक जगत की वस्तुओं के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है हमारी, तो इसके कारण माया का प्रभाव बहुत तेज आक्रमण कर देता है. इसे हमेशा शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि वो अनुकूल परिस्थिति होती है. और अगर हम भक्तों का संग करेंगे और भागवतम का श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तो काल रूपी मगरमच्छ जो है वो हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकेगा, वो थक जाएगा क्योंकि हमारे पास प्रतिकूल अवस्था होगी. लेकिन आज हम इस माया के हाथों पराजित हो जाते हैं. उसका कारण यही है कि प्रतिकूल स्थिति में रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमें शरण में ले लो, क्योंकि भगवान ने कहा है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो फिर माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरी शरण से तुम दूर हो गए और वे क्या होगा, मम माया दुरत्यया। केवल कृष्ण की शरण में रहकर ही हम माया से बच सकते हैं। इसे महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। कृष्ण से थोड़ा दूर हो जाता है और जीव भोग की इच्छा करता है। इस संसार में हम सब कृष्ण से बहिर्मुख हैं, कृष्ण से दूर होकर आए हैं और इस संसार में क्या करें, भोग वांछा करें। और जैसे ही जीव भोग वांछा करता है तो क्या होता है, निकट स्थित माया तारे झपट या धरे। निकट ही माया जो है वो अजगर की तरह घड़ियाल की तरह मुख खोल के बैठी होती है और झपटिया यूं झपट्टा मार के हमको अपने चंगुल में फंसा देती है और हम कितनी भी कोशिश करें फिर माया के मोहपाश से नहीं निकल सकते। तो यही स्थिति है यहाँ पर गजेंद्र की, बहुत बड़ा संकट है उसके ऊपर। इत्थम गजेंद्र स यदाप संकट, ये जो संकट उसे आ गया था, प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया। प्राणस्य मतलब प्राण में जीवन का संकट आ गया था, किसके कारण आ गया था, देही। वास्तव में भक्तों ये देही शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देही का मतलब होता है देह के अंदर रहने वाला। इस संसार में जीव को इसीलिए संकट है क्योंकि वो देह के अंदर है। ये देह के अंदर के संसार में जीव जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक इस देह के अंदर कैद है और इस देह को ही सुख दुख होते हैं। आत्मा के लिए कोई सुख दुख नहीं है, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को तो न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। ये सारे दुख संकट तो किस लिए हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये केवल शारीरिक बोध के कारण है, क्योंकि जीव इस देह के अंदर फंस गया है। जन्म लेता है उस समय दुखी, बड़ा होता है तो दुखी होता है, बीमार होता है तो दुखी होता है, बूढ़ा होता है तो दुखी होता है। हर क्षण ये देही देह के कारण दुखी होता है। और देही इस संसार में मनुष्य जीव बेचारा देह में फंसा हुआ है, तो देही दुख का बहुत बड़ा जाल है। अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि देह जो है वो हमारे दुखों का जाल है। हम रोज कहते हैं ना, शरीर अविद्या जाल, ये जो शरीर है वो अविद्या का जाल है। शरीर की सारी इंद्रियां जो हैं वो अविद्या के कारण हमें दुखों में ग्रस्त कर रही हैं। और इससे एक तो पहले से ये देह जो है वो हमारे दुखों का कारण है। इस देह के द्वारा कभी किस कौन सा दुख होता है, कभी कौन सा दुख होता है, देह के कारण होता है। और जब इस देह के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, किसी को अपना प्रेमी बना देते हैं, किसी को अपना पति बनाते हैं, किसी को अपना पुत्र, कोई हमारा पुत्र बन जाता है, कोई माता बन जाते हैं, कोई, एक तो देह पहले से ही अविद्या जाल है और जड़ेन्द्रियताए काल, ये इंद्रियां ही वैसे ही हमारी काल की तरह हर वक्त हमें नोचती रहती हैं। और उससे भी बढ़कर जब हम संबंध स्थापित कर देते हैं, वो सारे संबंध हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। लेकिन भगवान बहुत कृपामयी है, कृष्ण बड़ो दयामय। कृष्णा अपनी कृपा करते हैं हम पर और हमारे साथ, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना देते हैं कि हम इस देह में रहकर भगवान का भजन करके, भगवान के भक्तों की संगति करके, भगवान की कथाओं को श्रवण करके, भगवान को स्मरण करके इस देह के संकट से छूट जाने का प्रयास कर सकते। तो वास्तव में ये जो गजेंद्र के ऊपर स्थिति थी ना, गजेंद्र को वास्तव में इस स्थिति में डाला जा रहा था कि वो भगवान का स्मरण कर सके। और आज गजेंद्र एक हाथी हमें ये सिखा रहा है कि जब आप संकट में आओ तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे, प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया। वो बहुत विवश हो गया था, परिस्थिति विवश असहाय हो गया था और वो ये समझ गया था यदृच्छया ये दैव की इच्छा है, वास्तव में ये जो हो रहा है उसका कारण मेरा भाग्य है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, सबने कोशिश की, वास्तव में सब कोशिश कर रहे थे, जितने आती उसके साथ आए थे, जितने उसके बच्चे थे उसकी अत्नियां थी, सब कोशिश कर रहे थे, बार बार उसको बचा रहे थे, खींच रहे थे। कोई एक हाथी के सूंड से दूसरे हाथी की पूंछ को पकड़ता और फिर उसकी सूंड वो अपनी सूंड से दूसरे हाथ की पूंछ को पकड़ता और वो अपनी सूंड से दूसरे हाथी की पूंछ को पकड़ता, ऐसे बहुत बड़ी चेन करी हुई थी और सब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, सब बचाना चाहते थे। वो सोच रहा था, हाथी को इसके मन में ऐसा आ रहा था कि क्योंकि ये सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बचा पा रहे, इसका अर्थ ये है कि ये जो हो रहा है मेरे साथ वो दैव इच्छा से हो रहा है, मेरे भाग्य के कारण हो रहा है कि एक छोटा सा मगरमच्छ है और मैं उसे जीत नहीं पा रहा हूँ। ये अवश्य मेरे भाग्य का ऐसा लेखा है, मेरे कर्मों का जो मुझे भोगतना पड़ रहा है। वास्तव में भक्तों, इस संसार में व्यक्ति पूरा जीवन मेहनत करता है और वो चाहता है कि मैं सुखी रहूं, परंतु अवश्य एक समय ऐसा आता है जब उसे कष्ट भुगतना पड़ता है। वास्तव में संसार में आकर जीव कष्ट में पड़ जाता है, ये स्वाभाविक है, कष्ट में तो पड़ना ही है क्योंकि ये संसार ही कष्ट देने के लिए बनाया गया है। लेकिन उस समय जब आप कष्ट में पड़ते हो, उस समय जो डिसीजन लेते हो ना कि मुझे इस कष्ट से बाहर कैसे निकलना है, वो डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम जब कष्ट में पड़ते हैं तो फिर भरोसा किस पे करते हैं? संसार पे भरोसा करते हैं, अपने मित्रों पे भरोसा करते हैं, अपने संबंधियों पे भरोसा करते हैं, डॉक्टर्स पे भरोसा करते हैं, पीरों फकीरों पे भरोसा करते हैं। लेकिन आज ये हाथी हमें दिखा रहा है कि वास्तव में संकट के समय हमें कौन बचा सकता है। वो कह रहा है जो कुछ भी मिल रहा है मेरे भाग्य के अनुसार हो रहा है। वास्तव में हमें जो भी सुख और दुख मिलते हैं संसार में वो हमारे भाग्य के अनुसार ही मिलते हैं, क्योंकि भाग्य जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार लिखा हुआ है। यद्यपि भाग्य को बदलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भाग्य को बदलना, पर भाग्य के अनुसार जो सुख और दुख मिलते हैं वो देने वाला तो भगवान ही है। मतलब हमारे सुख और दुखों के और हमारे भाग्य के बीच में भगवान है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पूरा महीना जब किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी का जो मालिक होता है वो उसको महीने के बाद सैलरी देता है। मतलब सैलरी खुद ब खुद उसके पॉकेट में नहीं आ जाती, उसके मेहनत यानी उसके कर्म और उसके फल के बीच में वो मालिक खड़ा होता है। उसी तरह से हमारे और हमारे कर्मों के फल के बीच में भगवान खड़े हुए हैं। तो वैसे तो भाग्य को बदलना बहुत कठिन है, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निर्दहति सब भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। भक्ति करने से हम हमारे नसीब को बदल सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो उसका नसीब और उसके कर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं। फिर भगवान ही उसके जीवन की डोर को थामते हैं और उसके जीवन में यदि दुख भी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त के जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। दुख भी आते हैं तो उसके कर्मों का फल नहीं होते हैं, बल्कि वो भगवान की कृपा होते हैं। क्योंकि दुख नहीं होंगे तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो दुख जो होते हैं वो भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने के लिए होते हैं और उसको भक्ति में और भी उन्नति कराने के लिए होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा भगवान के ऊपर, भगवान के पास, जैसे अगर हम लोग रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक दो फीट का पत्थर आ जाता है। अब क्या होगा, जो उस दो फुट के पत्थर को देखेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा, उस पर विचार नहीं करेगा, तो क्या होगा, जरूर चोट लगेगी, गिरेगा और दुखी होगा। लेकिन यदि उन उस पत्थर को कोई देख लेगा और समझेगा कि ये तो मुझे ऊपर उठाने के लिए रखा गया है, और उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो वो और भी 2 फीट ऊपर हो जाएगा, है ना। तो वास्तव में भगवान ने हमारे जीवन में बहुत सारे पत्थर रखे हैं, और अल्प ज्ञान के कारण हम इनको दुख समझते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान इसलिए रख रहे हैं ताकि भगवान चाहते कि मेरा भक्त और ऊपर उठे और ऊपर उठे, मेरे पास आए। यदि दुख नहीं होंगे तो फिर हम भगवान को कब याद करेंगे। वास्तव में आज जीव की स्थिति ऐसी बन गई है कि दुखी भगवान के साथ। हम देखते हैं कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कहा था भगवान से, विपदः संतुतः साक्षात् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् न पुनर्भवद्दर्शनम्। कि मैं चाहती हूँ कि सारी विपदाएं बार बार आए, शाश्वत रीति से ये सारे दुख मेरे पास आ जाए, क्योंकि जब दुखों का दर्शन होता है, जब दुख आते हैं तो आपके प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, आपके प्रति हमारा स्मरण और बढ़ जाता है, और आपका दर्शन होता है तो फिर न पुनर्भव दर्शनम, फिर बार बार ये जन्म मरण के चक्कर का दर्शन नहीं करना पड़ता है। तो वास्तव में यदि हम इन दुखों से दुखी हो जाएंगे और इन दुखों से अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करेंगे तो क्या होगा, हम कभी ऊपर नहीं उठ सकेंगे। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, ये दुख तो भगवान ने हमें अपने पास बुलाने के लिए किए हैं, दिए हैं, ताकि हम अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें। गजेंद्र पर ऐसा संकट आ गया था, वे कहते अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम। अपारयन, वो अपने आप को असमर्थ मान रहा था, वो समझ रहा था अब मेरी शक्ति का काम नहीं कर रही है। आत्म विमोक्षणम, वो अपने आप को बचा नहीं सक रहा था, और बहुत समय भी हो गया था। और चिरम दध्या, चिरम दध्या का मतलब होता है दीर्घता काल तक, दध्यों का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक सोचने लगा। गजेंद्र दीर्घ काल तक सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है कि ये छोटा सा मगरमच्छ जो है मैं उसके साथ लड़ाई नहीं कर सक रहा हूँ। जरूर इसमें देव की इच्छा है, यदृच्छया, ये अवश्य देव की इच्छा है, इसी के कारण तो मैं नहीं ना इसके साथ लड़ाई कर सक रहा हूँ। तो फिर उसने क्या किया, इमाम बुद्धिम अथ अभ्यपद्यत। इमाम बुद्धि मतलब अब उसने बहुत सोचने के बाद एक निर्णय लिया, अब वो एक निर्णय कर रहा है। अथ तत्पश्चात अभ्यपद्यत, उस एक निर्णय पर वो पहुंचा। उसने बहुत समय तक सोचा, बहुत यहाँ पर सुंदर यहाँ शब्द बताया चिरम दध्यो, बहुत गंभीरता पूर्वक सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं एक गजेंद्र जब वो चलता था तब सारे बड़े बड़े जो जितने बड़े पशु थे वो सब उसके चलने से, उसके गंध मात्र से जब वो छुप जाते थे, और आज एक घड़ियाल से वो सारे हाथी मिलकर भी उसे नहीं बचा पा रहे। तो वो एक सोच रहा है बुद्धि में कि मुझे क्या करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य को जब इस संसार में संकट आता है ना, उस समय अगर ऐसी गंभीरता से वो सोचे ना, तो ही वो अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को पहुंच सकता है। वास्तविक जीवन की उन्नति कब होती है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन। अगर सुकृति होगी आपके जीवन में, अगर आपने पुण्य कमाए होंगे, तभी आपको दुख के समय वो याद आएंगे जिसको आज गजेंद्र याद कर रहे हैं। तो वास्तव में कोई जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं, उनको तो भगवान याद आते ही नहीं है। जो सुकृति हैं वो चार टाइप के, चार समय में भगवान को याद कर सकते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा। जब वो दुखी हो जाते हैं या उन्हें कुछ चाहिए होता है, धन की इच्छा होती है, जिज्ञासु होते हैं या ज्ञानी होते हैं, तभी वो भगवान को स्मरण करते हैं। तो आज गजेंद्र दुखी है और भगवान को स्मरण करना है सोच रहा है, अभी तक तो सोचा है भगवान को स्मरण करूं क्योंकि और तो कोई मुझे नहीं बचा सक रहा है। अब यहाँ पर सारे जितने भी उसके परिवार वाले, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है, अनुवाद देखिए, जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चुंगल में है और बंधन में फंस कर परिस्थिति वश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सक रहा है, तो वह मारे जाने के अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंत तो गत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में लगा हुआ है। प्रत्येक प्राणी अपने को संकट से बचाना चाहता है, किंतु जब वह अपने को बचा नहीं सकता है और यदि वह पवित्र है तो वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.16 में हुई है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आतो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चार प्रकार के पवित्र व्यक्ति जो संकट में आते हैं उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान की खोज करते हैं या जो जिज्ञासु होते हैं अपनी रक्षा के लिए या प्रगति करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस संकट की घड़ी में भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का निर्णय लिया। बुद्धि से ये सोचा कि अब कोई नहीं बचा सकता मुझे भगवान के अलावा, तो पर्याप्त विचार करने के बाद ही वह इस सही निर्णय पर पहुंचा था। ऐसा निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले सकता। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कहा गया है कि जो पवित्र सुकृति हो वे ही ये निर्णय ले सकते हैं कि संकट या विषम परिस्थिति में मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान तो कह दी यहाँ तक, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा। जो मूढ़ हैं, जो बेवकूफ हैं, मूढ़ का मतलब पता है क्या होता है? मूढ़ माने कि सो पागल मिलते हैं ना, सौ पागलों का पागलपन अगर एकत्रित किया जाए ना तो एक मूर्ख बनता है, और सौ मूर्खों की मूर्खता को एकत्रित किया जाए ना तो एक मूढ़ बनता है, और सौ मूढ़ों की मूढ़ता को एकत्रित किया जाए ना तो एक महामूढ़ बनता है, और वो महामूढ़ होता है जो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता, भगवान की शरण को स्वीकार नहीं करता। और भगवान कहते हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यति, मेरी शरण में आ गया ना तो आप स्वीकार कर लो कि वही ज्ञानी है, भले उसे कुछ भी ना खबर हो, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आ गया तो समझो बहुनाम जन्मनामन्ते, उसने पिछले जन्मों में बहुत ज्ञान एकत्रित कर दिया इसलिए आप भक्ति में लग गया है। तो वास्तव में जीवन की सार्थकता को आज गजेंद्र हमें बता रहे हैं। वो सोचकर इस निर्णय पर पहुंचे कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने क्या निर्णय लिया वो आगे श्लोक नंबर 32 में बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधा तुरावृतो अप्यहं शतं यामि परं परायणम्। नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधा तुरावृतो अप्यहं शतं यामि परं परायणम्। वो कह रहा है, गजेंद्र ने क्या सोचा, इतने समय तक युद्ध करते करते वो सोच भी रहा है साथ में, नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजा। नमाम यानी मुझको, इमे ये सब, ज्ञातय मेरे मित्र, मेरे संबंधी, अन्य सारे हाथी, आतुरं मेरे दुख में, उसका गजा मना हाथी, उस हाथी ने सोचा ये सब लोग जो मेरे मित्र हैं, मेरी पत्नियां हैं, मेरे संबंधी हैं, वो सब तो मेरी सहायता कर ही नहीं पा रहे, इस संकट से तो मुझे बचा, ये इतने बड़े बड़े हाथी मुझे नहीं बचा सक रहे हैं, कुतः करणिया कहते हैं मेरी पत्नियां फिर कैसे बचाएंगी, कैसे ये, वो तो उनके पास तो शक्ति भी कम है, तो फिर प्रभवंती मोचितम वो भला मुझे इस संकट से कैसे बचा सकती हैं, कैसे छुड़ाएंगी। ग्राहेण पाशेन विधा दुरात आवृत, ये जो आज पाश है ना, ये जो आज फंदे में फंसा हूँ वास्तव में वो घड़ियाल का पाश नहीं है, ग्राहेण पाशेन, ये ग्राहण का पाश नहीं है, विधातुरावृतो, वास्तव में मैं भाग्य का बंदी हो गया हूँ, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ ये संकट। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने भाग्य से पहुंचा हूँ तो फिर मुझे किसकी शरण में जाइए। आज ये सब मेरा साथ नहीं दे सक रहे हैं, ये सब मेरी रक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में संसार में हम देखते हैं मनुष्य को जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार वालों पे भरोसा करता है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, मेरा पिता मेरी रक्षा करेगा, मेरा पति मेरी रक्षा करेगा। और फिर जब वो रक्षा नहीं कर सकते तो कुछ लोग बड़े दुखी होकर बड़े बड़े लोगों की शरण में जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब भी दुखी ही होते हैं। कुछ लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन देवता जब दुखी होते हैं तो देवता भी भगवान की शरण में जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स की शरण में जाते हैं। वास्तव में आप अपने अपना जितना भी सारी जिंदगी में जितना भी किसी ने धन कमाया हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा आपका कोई संबंधी भी हो, यदि आप उसको कहो मृत्यु के समय यदि आप बोलो कि मैं आपको अपनी पूरी जायदाद दे देता हूँ, मुझे एक दिन बचा लो, मृत्यु के समय वो एक दिन भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, तो क्या काम, क्या फायदा ऐसे मित्रों का, ऐसे धन का जो हमें एक दिन भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर वास्तविक हमें जब दुख हो जाता है तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए वो हमें बता सकते हैं। संसार में कोई भी दुख खत्म नहीं कर सकता, दुख तो केवल वही खत्म कर सकता है जो कि यहाँ हाथी बता रहे हैं, अप्यहम चतम यामी परम्परायणम। अब वो कह रहा है इसलिए अब अहम चतम उस तम यानी उस भगवान की यामी शरण में जाता हूँ, अब मैं उस भगवान की शरण में जाता हूँ परम्परायणम जो दिव्य है, परम है, और परायणम है जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे सम्मानित देवताओं की भी शरण है। वास्तव में इतना सुंदर निर्णय ले रहा है हाथी, ये निर्णय बहुत इस मनुष्य जीवन में, इस हाथी ने पशु जीवन में ये निर्णय लिया और आजकल मनुष्य होकर भी ये निर्णय नहीं ले सकता कि सारे देवी देवता परायण है, वो सब देवी देवताओं को ब्रह्मा शिव आदि इंद्र सबको जो शरण देता है, हमें दुख के समय उसी की शरण में जाना चाहिए, ये अंतिम शरण है। संसार में जब हमारा कोई भी साथ नहीं दे सकता तब हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान, और भगवान अवश्य रिस्पांस देते हैं। जिस जिसने भी भगवान को पुकारा है भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। हम देखते हैं इस भौतिक जगत की क्या दें, शास्त्र का उदाहरण लेते हैं, जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया, पांच पति थे उसके, पांचों पति जब द्यूत क्रीड़ा में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने दुशासन को कहा जाओ लेके आओ द्रौपदी को, अब द्रौपदी हमारी दासी है। दुशासन रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को लेके आ गया, द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई थी और दुर्योधन ने आज्ञा दी दुशासन खींचो इस द्रौपदी की साड़ी को, नग्न कर दो बड़ी सभा में। दुशासन खींचना चाहता था, द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों की शरण ली कि आप कैसे देख सकते हो इस अवस्था को, बचाओ मेरी शरण, मुझे शरण लो, मेरी लाज बचाओ, मगर सारे उसके पति नजरें झुका के बैठे हुए थे। वो धृतराष्ट्र की शरण में गई लेकिन धृतराष्ट्र तो अपने पुत्र की साइड ले रहा था, भीष्म पितामह भी उसकी सहायता ना कर सके। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई उसकी सहायता नहीं कर सक रहा है तब द्रौपदी ने इतना ही कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाही माम जगत गुरु, हे जगतपति, हे कृष्ण द्वारिका वासी, अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अतिरिक्त अब और कोई नहीं मुझे बचाने वाला। तब उस समय भगवान द्वारिका से द्रौपदी ने बुलाया था, द्वारिका में बैठे हुए थे रुक्मणी के साथ पलंग पर, अचानक भगवान का सिंहासन डोलने लगा, भगवान कांपने लगे। रुक्मणी ने कहा क्या हो गया प्राणनाथ, कृष्ण ने कहा मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, उसे मेरी सहायता की जरूरत है। गरुड़ ने बोला बैठो स्वामी, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं एक क्षण में आपको पहुंचा दूंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें स्टार्ट होते होते देर लगेगी वहां पर, अभी मेरी जरूरत है, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तब भगवान ने गरुड़ को वहां पर छोड़ा और खुद आगे निकल गए। उस समय में भगवान ने ये सोचा, अभी मैं द्वारिका से जा रहा हूँ, हस्तिनापुर बहुत दूर है, जाते जाते मुझे भी समय लगेगा, तो उससे पहले ही वस्त्र को आज्ञा दी, जाओ तुम जाके उसकी लाज बताओ, मेरी बहन आज उसकी लाज संकट में है। तो महाभारत में कथन आता है कि तीन एक साथ जा रहे थे, भगवान पहले सबसे पहले वस्त्र जा रहा था, जो साड़ी भगवान ने भेजी थी वो आगे उड़ उड़ के जा रहा था, पीछे भगवान आ रहे हैं और उसके पीछे गरुड़ जी आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान ने उस द्रौपदी की रक्षा की और दुशासन खींचता जा रहा है, परंतु वो हजारों करोड़ों माइल जो मीटर्स की साड़ी बन गई, इतनी वो खींच रहा है, लेकिन वो खींचते वो दुशासन जिसके हाथ में 10,000 हाथियों का बल था, वो साड़ी खींच के, महाभारत में लिखा है, उसके मुंह से फेण निकल आया। वो खींच नहीं पा रहा था, वो थक गया, हार गया और वहीं पर बेहोश हो गया। जिसने भी भगवान की सहायता मांगी तो भगवान ने अवश्य उसकी रक्षा की है। द्रौपदी दोनों हाथों से अपने मुख को छुपा कर रो रही थी और फिर कृष्ण से कहा, कृष्ण अगर तुम आज बहुत और देर करते तो न जाने क्या अनर्थ हो गया, तुमने आने में इतनी देर क्यों की, तुम्हें यदि मेरी लाज बचानी ही थी तो इतना ज्यादा अपमान मेरा होने ही क्यों दिया। तब कृष्ण ने कहा, देखो सखी, मैं तो सदैव तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुमने मुझे द्वारिका से जो बुलाया था ये कहा था ना, हे कृष्ण द्वारिका वासी, तो अब द्वारिका वासी तो मुझे सबसे पहले यहाँ से पहले द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से आना पड़ा ना, इसलिए देर हो गया, वरना तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में, भगवान वास्तव में हमारे हृदय में हमारे साथ रहते हैं, तो हम जब भी भगवान को संकट में पुकारते हैं तो भगवान अवश्य आकर हमारी रक्षा करेंगे, और आज ये गजेंद्र हमें दिखाएंगे कि किस प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करते। तो गजेंद्र ने क्या निर्णय लिया, अप्यहम शतम यामि परम्परायणम, आज मुझे उन भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो कि समस्त देवी देवताओं को, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे सम्मानित देवताओं के भी आश्रय है। तो इस सुंदर निर्णय से जो गजेंद्र ने लिया है उससे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे जीवन में संकट आता है, जब दुख आता है, तो केवल भगवान ही उसे दुख को दूर कर सकते हैं, क्योंकि संसार में सब दुखी हैं। जो दुखी हैं वो भला तुम्हें क्या सुखी कर सकते हैं, सुख तो केवल वही दे सकते हैं जो सदैव सुखी रहते हैं, जो सदैव मंगलमय है। और मंगलमय कौन है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनोहरि। केवल वो भगवान ही करुणा के सागर हैं, हम दुखियों के एकमात्र आधार है, तभी तो हम कहते हैं कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति। ये कृष्ण जो है वो करुणा के सागर हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है, जो जब कोई विपत्ति आती है, तो अवश्य भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। अनुवाद देखिए, ये गजेंद्र सोच रहे हैं, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक के, यहाँ तक के महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। तो गजेंद्र ने यह निश्चय किया, अपनी बहुत ज्यादा विचार के बाद यह बुद्धि से यह निश्चय किया कि मुझे अभी उस भगवान की शरण में जाना चाहिए जो समस्त महापुरुषों को, यहाँ तक के देवी देवताओं को भी आश्रय प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह संसार पदम पदम यत्वी पदाम रूप में वर्णित है,
जिसका अर्थ है कि इसमें पग पग पर संकट है। तो फिर कोई लोग ये सोच सकते हैं कि हमें तो संकट नहीं दिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मूर्ख झूठे ही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इसमें पग पग पर और हर क्षण संकट है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं सुखी हूं, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि संकट तो होने ही है, इस संसार में अनिवार्य है। ये संसार दिया भगवान ने बनाया इसलिए है कि जीव को दुख मिले, क्योंकि यह संसार आपके दुख भोगने की जगह है। आपके कर्मों के अनुसार आपको यहाँ संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान और सुंदर कार हो तो उसका जीवन पूर्ण है। पाश्चात्य देश में, विशेषतः अमेरिका में, अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु जो ही वह सड़क पर कार चलाता है तो उसे संकट बना रहता है, क्योंकि वह किसी भी क्षण दुर्घटना में मर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में यह सोचते हैं कि यह संसार अत्यंत सुखमयी स्थान है, तो यह हमारा अज्ञान है। प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि जो जो वस्तु हम सोचते हैं कि हमारे लिए सुख का कारण बनेगी, तो अंत तो गत्वा वही हमारे दुख का कारण बनेगी। तो हमारा सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम इस संसार में सोचते हैं कि कोई अमुक वस्तु प्राप्त करके हम सुखी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, असली ज्ञान तो यह है कि यह भौतिक जगत संकट से परिपूर्ण है। हम वहीं तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। किंतु जब तक भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से बचा नहीं लेते, तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ होते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक व्यक्ति कितनी कोशिश कर सकता है, जितनी उसके पास सामर्थ्य है, जितना उसके पास बल है, जितना उसके पास बुद्धि है, जितना उसके पास धन है, लेकिन जब वास्तव में संकट आता है तो हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारे काम नहीं आता। वास्तव में जब तक वास्तव में हम संकट में पड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, तब तक हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। अतएव प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवतम महाप्राण कैंटो 7 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 19, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह नार्तस्य चागदमुद वतिमच्छतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांजसेष्टम् तावत् विभूतनुभृता त्वदुपेक्षितेनाम्। अर्थात भले ही हम सुखी रहने या इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों न ढूंढ लें, किंतु जब तक हमारे प्रयास को भगवान की पुष्टि नहीं मिल जाती है, वे हमें कभी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग भगवान की शरण लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं, वे मूढ़ हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान कहते हैं वो मूढ़ हैं, मूर्खों में महामूर्ख हैं, जो मेरी सहायता के बगैर संसार में सुखी होने का प्रयास करते हैं और मेरी शरण में नहीं आते हैं। अधम लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कृष्ण की रक्षा के बिना ही वे अपनी सुरक्षा कर लेंगे। यही उनकी भूल है। गजेंद्र का निर्णय सही था। ऐसे संकटमय स्थिति में उसने भगवान की शरण ग्रहण की। श्रील प्रभुपाद की जय है। तो हमने देखा कि गजेंद्र कितना महान बलवान था, उसके कितने बहुत बलवान हाथी उसके मित्र थे, परंतु आज जब वो संकट में है तो कोई उसके साथ उसका साथ नहीं देता है, और वो निर्णय करता है कि मुझे उसकी शरण में जाना चाहिए
जो समस्त बड़े बड़े देवी देवताओं को भी आश्रय प्रदान कर देते हैं। तो हमें गजेंद्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे संसार में हम कितने ही दुखी क्यों न हो, हमारा वास्तविक कल्याण यदि संभव है तो केवल भगवान की शरण में जाकर, भगवान की शरण में जाकर हर संकट जो है वो हमारे लिए कल्याणमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। आज तो गजेंद्र दुख से कर्रा रहा है, पछता रहा है, दुखी हो रहा है, परंतु जैसे ही भगवान को स्मरण करेगा वैसे ही उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। वो भगवान को बोलेगा, भगवान मुझे अब इस ग्राह के चुंगल से केवल नहीं बचना है, मुझे तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है। तो यदि हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हम समस्त दुखों से निवृत्त हो जाते हैं और वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धिमानता यही है कि हम सदैव भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि दुखिया इस जीव इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो भगवान की शरण में नहीं जाता। इसलिए हमें हर स्थिति में भगवान को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सुख में सिमरन जो करे तो दुख कहाँ से हो। यदि आप सुख में स्मरण करेंगे, हम सब भगवान का नाम लेंगे, तो फिर तो दुख कभी हमारे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि दुख तो इसलिए आता है क्योंकि हम भगवान का स्मरण नहीं करते, और जैसे स्मरण करते तो दुख दूर हो जाता है। इसलिए यदि हम सुख में भी भगवान का स्मरण करेंगे तो कभी भी दुख हमारे निकट आ नहीं सकेगा। इसलिए हमें सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, हमारी कथा भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, और साथ में मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।